नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने मतदाताओं को लुभाने का हर संभव प्रयास किया। असम की 126 सीटों, केरलम की 140 सीटों और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए गुरुवार को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। इस बीच तमिलनाडु में एक चरण के मतदान और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच आज की गई। उम्मीदवार गुरुवार तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल के पहले चरण की 152 सीटों पर मतदान इस महीने की 23 तारीख को होगा। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का मतदान 29 तारीख को 142 सीटों पर कराया जाएगा। चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए मतगणना 4 मई को होगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा के अधीन मतदाताओं की पूरी सूची जारी कर दी है। 32 लाख से अधिक मतदाताओं को योग्य घोषित किया गया है, जबकि लगभग 27 लाख को अयोग्य घोषित किया गया है। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति में कमी की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि सभी पेट्रोल पंप सामान्य रूप से चल रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। सुश्री शर्मा ने कहा कि एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी भी सुचारू रूप से जारी है और ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग लगभग 96% तक हो गई है। उन्होंने कहा कि कुल वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन संकट पूर्व स्तरों के लगभग 70% तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 5 किलो के एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री दोगुना करने का नया आदेश जारी किया है।
5 किलो के सिलेंडर्स फरवरी महीने में एवरेज सेल पर डे लगभग 77,000 थी। कल भारत सरकार ने एक नया ऑर्डर इशू किया है और इस ऑर्डर के द्वारा 5 किलो एफटीएल सिलेंडर की सेल को डबल करने की बात की गई है। 23 मार्च से लगभग 7,80,000 से ज्यादा 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हो चुकी है।
पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पश्चिम फारस की खाड़ी में क्षेत्र में 433 भारतीय नाविकों वाले 16 भारतीय ध्वज वाले जहाज मौजूद हैं। ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर कल इसराइल के हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इसराइल ने ईरान के सबसे बड़े गैस संयंत्र अस अलुया स्थित साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमला किया। इस घटनाक्रम से जवाबी कार्रवाई और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान की आशंकाएं बढ़ गई हैं। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान समझौते और तय समय सीमा से पहले हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने पर सहमत नहीं होता है तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा और परिवहन बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन पीएलआई योजना के उत्साहजनक परिणाम आए हैं। इसमें लगभग 7,000 करोड़ रुपए के प्रतिबद्ध निवेश के मुकाबले कुल निवेश 9,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये निवेश दर्शाता है कि कंपनियों ने अपने प्रारंभिक निवेश प्रतिबद्धताओं को पार कर लिया है। नई दिल्ली में मंत्रालय के संयुक्त सचिव डी प्रवीण ने कहा कि इस योजना ने उत्पादों की बिक्री और निर्यात में वृद्धि में भी योगदान दिया है। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतिस्पर्धा के लिए देशभर के फिल्म निर्माताओं और रचनात्मक व्यक्तियों को आमंत्रित किया है। अपनी अद्भुत किस्सा गोई के जरिए वंदे मातरम की भावना को दर्शाने के लिए ये प्रतिस्पर्धा राष्ट्र के प्रति गौरव को प्रदर्शित करने में अपनी रचनात्मकता, नवाचार और सिनेमाई कौशल को व्यक्त करने के लिए प्रतिभागियों को एक मंच प्रदान करती है। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।